समाना, समाना देखो तुम इस वक्त गुस्से में हो, घर ना जाओ, एक मिनट रुको, साथ चलते हैं, गपशप मारते हैं, बात करते हैं।
मैं जरूर अब्बू को बताऊंगी कि आज आपने क्या किया है।
समाना खुदा के लिए देखो, कसम से मुझे गुस्सा आ गया था, आपे से बाहर हो गया था। समाना देखो मेरी बात सुनो, मैं समझा के मोबाइल में गंदी तस्वीरें हैं जो तुम्हें दिखा रही है, और इसलिए
आपकी बातें खत्म हो गई।
खुदा के लिए अब्बू से कुछ ना कहो।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम फरमान साहिबा।
वालेकुम सलाम बेटी,
आप ठीक हैं?
खुदा का शुक्र, तुम ठीक हो बेटी?
बहुत शुक्रिया।
अरे हाँ समाना बेटी, इंशाल्लाह तुम्हारी शादी कब हो रही है?
फिलहाल कुछ नहीं मालूम, जब तक पढ़ाई मुकम्मल ना हो जाए शादी नहीं करूँगी।
शादी में देर ना करो बेटा, मंगनी और शादी के बीच ज्यादा फासला नहीं होना चाहिए, अच्छा नहीं होता।
जी फरमान साहिबा, माफ कीजिएगा, महनोश है?
नहीं बेटी, आज उसका क्लास था और क्लास के बाद भी कहीं और काम था।
अच्छा, मैं समझी घर आ चुकी होगी वो।
नहीं अभी नहीं आई है समाना बेटी।
ठीक है, आ जाए तो उसे कहेगा कि मुझे एक फोन कर ले।
ठीक है, कह दूंगी, लेकिन तुम भी ज्यादा देर नहीं करना बेटी, जैसे ही पढ़ाई खत्म हो शादी कर डालो, अपनी जिंदगी बसा लो।
जी बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
आओ चले ना, देर हो रही है, डॉक्टर के पास नहीं पहुंच पाओगी तुम आज, बहुत देर हो रही है। किसको एसएमएस दे रही हो?
नाजी को, उन्हें कहा मैं डॉक्टर के पास जानी हूँ तो देर हो गई, तो उन्हें कहना मैं डॉक्टर के पास हूँ।
अस्सलामुअलैकुम, कैसी हैं असल साहबा?
वालेकुम सलाम।
क्लास नहीं जाएंगे क्या? तशरीफ ले जा रही हैं?
मैंने डॉक्टर से वक्त लिया, मैं नहीं आ सकती हूँ। आपको कोई काम था मुझसे?
नहीं, देखा कि आप जा रही हैं, सोचा कि याद दिला दूं कि शायद आपका क्लास भी है।
क्लास तो नहीं भूल सकती कल, लेकिन मैं आपसे नोट ले लूंगी सारे। ठीक है, खुदा हाफिज़।
ठीक।
तो अजब है, क्या काम था?
चलो यार छोड़ो।
लेकिन तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, मुझे देख के खामोश हो गया।
कुछ अरसे से मुझे कुछ कहना चाह रहे हैं।
उसे अपनी बात क्यों नहीं करने देती?
अपने टाइम पर, मुझे पहले तैयार होने दो फिर।
लेकिन मेरे ख्याल में बहुत अच्छा लड़का है।
अच्छा होने से ज्यादा जरूरी ये है कि वो डीन का बेटा है।
पता है बीता, ऐसे लड़के जो पुरसुकून और पढ़ाकू होते हैं इश्क मोहब्बत में भी बहुत पक्के होते हैं।
मैं इश्क आशिकी को नहीं मानती, अब्बू से ही कहते हैं शोहर ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे लिए ठीक ठाक जिंदगी बना।
लेकिन काश रुक जाती, देखती कि वो तुम्हें क्या कहना चाहता है।
तुम बहुत सीधी हो शबनम, एक हफ्ते से मेरे पीछे लगा हुआ है मुझसे बात करे, मैं मुख्तलिफ बहानों से निकल जाती हूँ उससे।
क्यों?
मेरी अम्मी के बकौल आसानी से हाथ लगी चीज की कदर नहीं होती।
अच्छा, तुम्हारे ख्याल में मैं भी करवा दूँ?
क्यों नहीं, आजकल देखो शादी के लिए दो चीज़ें अहम होती हैं, एक खूबसूरती, दूसरा पैसा। इसी रूसबे को ही देख लो, यूनिवर्सिटी में इतनी लड़कियों में से उसने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मैं अपनी शक्ल और सूरत को अहमियत देती हूँ, अगर ये चीज़ उसके लिए अहम नहीं होती तो वो किसी और को इंतखाब करता।
लेकिन मैं डरती हूँ बुरा ना हो जाए।
दिल को बड़ा रख के कदम उठाओ। दूसरी दफा हर कोई मेरी नाक की सर्जरी के खिलाफ था, लेकिन मैंने अब्बू से कहा मुझे जरूर सर्जरी करानी है। बुरी है क्या?
मेरे ख्याल में भी जरूरत नहीं थी।
तुम्हारी राय अहम नहीं है, बस बताओ बुरी हुई है क्या?
हाँ, मस्नूई लगती है, साफ लगता है कि सर्जरी करवाई है।
तो बुरी नहीं बनी फिर। मैं चाहती थी कि सबको लगे कि सर्जरी करवाई है, क्योंकि आजकल हर कोई ऐसा करता है।
बीता, तुम्हें वो लड़की याद है जो हमारे सीनियर थी?
हाँ हाँ हाँ, समझ आ गई किसका कह रही हो।
उसने इतनी बार सर्जरी कराई थी कि सारे लड़के उसको माइकल जैक्सन बुलाते थे।
तो कहें, अहम यह है कि वो खुद राजी है। इंसान को अपने आप से खुद राजी होना चाहिए। अलबत्त वो ज़रा कुछ अजीब गरीब सी हरकतें करती थी, मैं ज़्यादा मुआफ़िक नहीं हूँ उन चीज़ों से।
क्या तुम्हें पता है कि वो आखिरकार यूनिवर्सिटी छोड़ने पर मजबूर हो गई?
तुम्हें कहाँ से पता, शायद शादी करके चली गई हो, हमें क्या पता उसका।
शादी करने का उन चीज़ों से बिल्कुल रब्त ही नहीं है, अक्लमंद इंसान इस चीज़ों को अहमियत देता ही नहीं है।
यार तुम अभी मेरे साथ थी, क्या रूज भी अकलमंद इंसान नहीं है?
लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि इंसान बार बार अपनी शक्ल तब्दील करे ताकि दूसरे इंसानों से तवज्जो दे।
तुम मुझे अभी भौहों का बोटॉक्स करने दो, फिर देखना मैं कितनी खूबसूरत लगूंगी।
लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ ये सारी चीजें रहने दो, मेरी अम्मी कहती है उन कामों की वजह से इंसान के चेहरे की रूह खत्म हो जाती है।
चले
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम। जल्दी क्यों आ गई? तुमने सुना रात को तुम्हारे अब्बू क्या कह रहे थे कि मेहदी कहाँ गया है? क्या हुआ है?
उस अहमक लड़के ने मेरा फोन तोड़ दिया।
किस अहमक लड़के ने?
वही समाने का पागल मंगेतर।
ओहो मैं तो डर गई, समझे किसी ने सड़क पे तुम्हारा मोबाइल छीना है।
कसम से अगर समाना ने उसे नहीं समझाया तो मैं बिल्कुल उससे बात नहीं करूंगी।
देखा ना, इसीलिए तो कहती हूँ कि दूसरों के कामों में टांग मत अड़ाओ। उनसे क्या काम है तुम्हें, अपनी जिंदगी की फिक्र करो, अपनी फिक्र करो।
साफ जाहिर है मैं तो अपनी जिंदगी गुजार रही हूँ, वो भी अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, उनसे क्या।
मैं मेहदी की खातिर मुनेरिया के घर से निकली और ये लड़का देखो क्या कर रहा है वहां, उठ के बगैर किसी सलाह मशवरे के पूछे बगैर वहां चला गया और वहां के घर में रह रहा है।
पता है क्या, मैं जब भी इन चीजों को देखती हूँ ना मुझे यही नतीजा मिलता है कि मुझे कभी शादी नहीं करना चाहिए।
सब तो एक जैसे नहीं होते, इसी मेहदी को देखो, अपनी बीवी की गुलामी कर रहा है, वो ही करता है जो बीवी कहती है। कभी नहीं सोचा कि मैं जब उस घर में जाऊंगा तो मेरी माँ का क्या हाल होगा, उस पर क्या गुजरेगी, उसका दिल तो खून हो जाएगा।
उनको भी बेहाल कहीं रहना तो है ना,
तो जहाँ रहना है जाए, जाके रहे, मैं उसके घर थोड़ी जाऊंगी। बाद में अगर उसका जीचा है तो बच्चे को लाके मुझे दिखा दे, वो और बात है, मैं उसके घर नहीं जाऊंगी, मुतमइन रहो।
आप इतना अपने बेटे से चिपक गए कि आपको ख्याल ही नहीं कि मैं क्या कह रही हूँ। आप सुन रही हैं मैं क्या कह रही हूँ?
अच्छा तो मैं क्या करूँ?
कुछ नहीं, आप अपने बेटों के साथ चिपके रहे ताकि मैं देखूँ आखिर में होता क्या है। हम लोग बस यहाँ पर बैठ के तमाशा देखें कि मेहदी कहाँ जा रहा है, क्या खा रहा है, कहाँ सोता है, क्या करता है।
सलाम अलैकुम अम्मी जान।
वालेकुम सलाम।
अम्मी जान आप परेशान क्यों हैं, कुछ हुआ क्या?
कुछ नहीं हुआ, मैंने सिर्फ उस नाहक थप्पड़ की वजह से जो तुम्हें पड़ा था उस घर को छोड़ा था, लेकिन अब तुम चाह के वहां रह रहे हो, सोचा तक नहीं कि ये काम एक तरह से बदतमीजी है।
अम्मी ये क्या कह रहे हैं आप, मेरी इतनी हिम्मत कैसे कि आपसे बदतमीजी करूं मैं?
तुमने बहुत गलत काम किया है मेहदी, बहुत गलत काम किया है।
अम्मी इत्तेफाक से अब जब वहां गया हूँ और दादा जान की हालत देख लिए तो समझता हूँ बिल्कुल सही किया है।
अगर मुझे पता होता तो पहले ही दिन कहती कि जाके अपनी सास के साथ रहो, इस तरह मेरे लिए कम बदतमीजी और शर्मिंदगी का बाइस बनते।
अम्मी जान मैं सदके जाऊँ कैसी शर्मिंदगी, अगर मुनीरिया के घर में आपकी जिंदगी को तलख किया गया तो असल कसूरवार सुरैया फूफी थी, दादी जान और दादा जान नहीं, खुदा की कसम उनको आपकी बहुत याद आ रही है।
बिल्कुल नहीं, उन्होंने भी सुरैया का साथ दिया, खामोशी इख्तियार की, यानी इस काम पर राजी थे।
अम्मी जान खुदा की कसम दादा जान ने चंद दिन पहले खुद मुझे बताया कि जब आप लोगों को उस घर से जाने को कहा तो उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके सीने पर आग का गोला रख दिया, कह रहे थे कि मैंने सुरैया फूफी को खामोश करने के लिए मजबूरन आप लोगों को घर से जाने दिया। अम्मी जान मैं सदके जाऊं, मैं वक्ती तौर पर वहां रह रहा हूं, खुदा की कसम वर्कशॉप बेचने के बाद कोई घर किराए पर ले लूंगा, फिलहाल मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर यहां रहता तो आप और परस्तु के ताल्लुकात खराब हो जाते।
इत्तेफाक से तुमने इस तरह से मेरे और परस्तु के ताल्लुकात को बहुत खराब किया है, मुझे यकीन है कि उसने तुम्हें वहां रहने के लिए उकसाया है।
अम्मी जान कसम से आप गलत समझ
रही। नहीं मैं गलत नहीं समझ रही हूँ। उसी वक्त जब वो हुमा के पास गई मैं जानती थी कि उसका प्लान ये है कि तुम्हें इस घर में ले जाए।
अम्मी मैंने हताबू को भी नहीं बताया। जिस दिन परस्तु ने आपको फोन किया आपसे झूठ बोला कि मैं इस्फहान गया हूं। एक कर्ज खान ने आकर मुझे गिरफ्तार करवाया था। हुमा फूफी को जब ये पता चला तो अपने अकाउंट से सारा पैसा निकाला और जेवरात बेच दिए और जमानत देकर मुझे जेल से बाहर निकाला उन्होंने। उस रात जब उनको पता चला कि मेरे पास किराए पर घर लेने का पैसा नहीं है तो मुझे अपने घर रहने के लिए बुलाया उन्होंने। इसमें परस्तु का कोई अमल दखल नहीं था। खुदा के लिए परस्तु पर इतना शक मत कीजिए।
जाओ बैठो मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूं।
बहुत शुक्रिया आपका। दादा जान दादा जान दादा जान दादा जान कहाँ जा रहे हैं?
जा रहा हूँ हमीद को लाने ताकि तुम्हें देखे।
पर आधी रात को?
अरे दिन को काम पर जाता है ना, मुझे नहीं मालूम कि कहाँ काम करता है।
मैं सदके जाऊँ, आइए घर चलते हैं, मैं कल खुद आपको उनके पास लेके चलूँगा। आइए।
तुम्हें सुरैया फूफी के पास जाकर अपने चचा को वहाँ से लाना होगा। सुरैया से अपना तारुफ नहीं कराना, उसे कुछ नहीं कहना, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि तुम कौन हो, वरना तुम्हें हमीद से मिलने और उसे लाने नहीं देगी। हमीद से मिलके उसे यहाँ ले आना, सुरैया ने कसम खाई है कि मरते दम तक हमीद को मुझसे मिलने नहीं देगी।
ठीक है, ठीक है, ठीक है, आप बेफिक्र रहिए, मैं उनको पता नहीं चलने दूंगा।
अबू जान
मेरे खुदा,
मैं आप पर कुर्बान जाऊं, आज फिर से आप हमें बताए बगैर घर से निकल गए।
मेहदी को बताया, क्या तुम लोगों को भी बताना पड़ेगा? ये लोग दरवाजे को ताला लगाते ताकि मैं हमीद को लेने न जाऊं।
ठीक है दादा जान, ठीक है, चलिए।
अबू जान आप जब आधी रात को बाहर निकलते हैं तो कम से कम हमें बता कर जाए।
अबू जान कोई बात नहीं, आइए आइए तशरीफ लाइए।
आइए आइए। खुदा तेरा शुक्र है। ओ खुदा, अच्छा वो आ गए। दरवाजे को ताला लगाना भूल गई थी।
दादा जान मैं सदके जाऊं, अब आइंदा अकेले आप ना जाइए कहीं भी, जहां भी जाने का दिल चाहे मुझे बताइए, मैं आपको लेके चलूंगा।
खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे बेटा।
ये लीजिए शरबत,
जाओ सो जाओ।
जी
जाओ।
शब्बख
खैर बेटा।
खुदा तेरा शुक्र।
अच्छा हुआ जो आपको पता चल गया।
पहले भी कभी ऐसा हुआ?
दादाजान सो गए?
हाँ सो गए हैं।
ये तो बहुत खतरनाक है, कब से ऐसा हो रहा है फूफी जान?
4-5 साल से ऐसा होने लगा है। पहले मसला बहुत कम पेश आता था, लेकिन पिछले 3-4 महीने से तबीयत मज़ीद ख़राब है। 2-3 बार घर से निकल कर रास्ते में भटक गए, अब यहाँ पे मजबूरन दरवाजे को ताला लगाना पड़ता है।
उफो
फातिमा,
क्या करें?
फातिमा
जी, अल्लाह
अम्मी जान आप जाए उनके पास।
ठीक है। ए मेरे खुदा, ए मेरे खुदा।
फूफी जान इसकी वजह क्या है?
अब्बू को डिप्रेशन हो गया है। डॉक्टर कहते हैं कि सारे तहमात इसलिए हैं कि हमीद के बारे में बहुत सोचते हैं और परेशान होते हैं। आप जाके सो जाएं।
ऐसे तो नहीं हो सकता है ना फूफी जान। मैं कहती हूँ हमें जाके हमीद चचा को ढूंढ के लाना चाहिए, ताकि दादा जान उनको देख लें। उनके घर का पता वता है?
अब नहीं।
क्या मतलब?
कुछ अरसे पहले तक सुरैया फूफी के घर रहते थे, लेकिन अब वहाँ नहीं, वहाँ से भी चले गए।
तो उनको ज़रूर हमीद चचा के घर का पता मालूम होगा, जाके उनसे पूछ लेते हैं। मैं फूफी को भी ले के आता हूँ, बेचारी अकेली रह रही है, ये बहुत बुरी बात है कि हम एक दूसरे से बेखबर। फूफी जान मैं आपको नहीं कह रहा हूं, मैं खुद अपने आप को कह रहा हूं, हमें हालात को इतना नहीं बिगड़ने देना चाहिए था।
मैंने कई बार उनकी सुलह कराने की कोशिश की पर नहीं हुई।
क्यों नहीं हो सकी?
अच्छा इस दफा मैं भी आपके साथ हूं, इंशाल्लाह खुदा ने चाहा तो इस नाराजगी को खत्म कर देंगे। दादा जान के लिए भी ठीक नहीं है ये चीज। आप ही तो कह रहे थे कि उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ रही। फूफी जान आप इस मसले को हल करने में मेरी मदद करेंगी?
आखिरी दफा मसूद ने मुझसे कहा कि मैं उनके साथ ना जाऊं, वो अकेले सुरैया फूफी के घर जाएं और हमीद को वापस ले आएं। लेकिन जब वापस आए तो अकेले थे। मुझे भी कसम दी कि उसके बाद कभी भी सुरैया फूफी के घर तरफ ना जाऊं।
लेकिन क्यों?
मालूम नहीं, मैंने बहुत पूछा, उन्होंने वजह नहीं बताई। मसूद बहुत पुरसुकून इंसान थे, सुरैया फूफी के साथ उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे थे। हमेशा कहा करते थे कि उनको यहाँ लाना होगा, लेकिन पता नहीं उस दिन हमीद या सुरैया ने उनके साथ क्या किया या क्या कहा कि मसूद जब घर आए तो बहुत गुस्से में थे, बहुत। जिस दिन माज पर जा रहे थे मैंने उनसे कहा कि दोनों सुरैया फूफी के घर चलते हैं, उनसे खुदाफिजी करते हैं। मैं नहीं चाहती थी कि उनके दिल में किसी से नफरत रहे। मेरा दिल गवाही दे रहा था कि वापस नहीं लौटी। नहीं चाहती थी कि किसी से नाराज होकर जाएं।
अच्छा
नहीं माने, कहा कि उनसे कभी वहां जाने का ना कहूं, लेकिन तुम्हारे अब्बू से रुखसती के लिए आए।
मुझे याद।
तुम्हें याद है जिस दिन मसूद ने कहा कि मोहसिन को देखने चलते, मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी, कई महीनों से उनसे बेखबर रही थी, उस माँ की तरह थी जो अपने बच्चे के हाल से बेखबर हो।
السلام علیکم جناب.
سلام،
کیسے ہیں آپ؟
خوش آمدید.
سلام بھائی جان.
وعلیکم السلام بہن، کیسے
ہیں؟ سلام علیکم.
تشریف لائیے.
شکریہ.
کیسے ہیں آپ لوگ؟
سلام میرے بیٹا، کیسے ہو مہدی؟
ٹھیک ہوں میں.
شکریہ میرے بیٹے، تمہاری بہت یاد آ رہی تھی.
محسوس صاحب، آپ کی شادی تو حال ہی میں ہوئی ہے نا، محاذ پہ کیوں جا رہے ہیں؟
سلام میرے بیٹے، بہت تمہاری یاد آ رہی تھی. کیسے آپ اپنا سبق خوب یاد کرتے ہیں.
سچ مچ جنگ بھی تو ختم ہو گئی ہے، کیا ایران نے قرارداد قبول نہیں کی ہے؟
کیوں نہیں، لیکن امریکہ کو واہم ہو گیا کہ ہم ضرور کمزور ہوں گے، اس لیے اپنے چیلے چاٹوں کو یعنی ان منافقین کو بھیجا ہے کہ مثلاً وہ ہمارا کام تمام کر دیں.
امام خمینی نے اس لیے تو کہا ہے کہ اس وقت جو بھی محاذ پر جا سکتا ہے اسے جانا چاہیے.
ہاں، ان کے زوم میں وہ دو دن میں تہران پر قبضہ کر لیں گے.
دو دن؟
ہاں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ دو دن میں مہران سے تہران پہنچ جائیں گے.
ہمارے ٹیچر بھی چلے گئے.
کون سے ٹیچر؟
سرفراز سر.
تو آپ کون پڑھاتا ہے؟
ایک نئے ٹیچر ہے وہ.
معاف کیجیے گا، ایک پیال چائے والے.
شکریہ، ضرورت نہیں ہے اس کی.
اچھا، تو پھر کب نکل رہے ہیں؟
خدا نے چاہا تو آج ہی.
کس طرف بھیج رہے ہیں آپ کو؟
احتمالاً کرمانشاہ کی طرف جاؤں.
کرمانشاہ تک تو نہیں پہنچے؟
نہیں نہیں نہیں، وہاں کی فوج خود ہی ان کے سامنے ڈٹ گئی ہے، چہار زیبر وادی میں ان کو روک دیا ہے.
خدا نے چاہا تو وہیں پر سب واصل جہنم ہو جائیں گے
انشاءاللہ.
یہ لیجیے.
شکریہ.
کوئی بات نہیں،
زحمت کیا آپ نے،
تکلف میں پڑ گئی ہیں.
شکریہ، بہت بہت
بہت شکریہ.
کیسے ہو؟ پنجہ لڑو گے یا کشتی لڑے؟
کشتی.
ماشاء اللہ، تم پہلوان بن گئے ہو. میں قربان جاؤں، بہت بہت اچھے لڑکے ہو تم.
اس دن جب ہم گھر لوٹے، محسوس سوچوں میں ڈوبے ہوئے تھے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ بولے میں ایک شوہر کے عنوان، شریک حیات کے عنوان سے راضی نہیں ہوں کہ تم سریا پھوپھی کے گھر جاؤ. میں نے بھی وہیں وعدہ کر لیا کہ اگر صحیح سلامت واپس آئے تو کبھی سریا پھوپھی کے گھر نہیں جاؤں گی. وہ واپس نہیں آئے، لیکن میں اپنے وعدے پر ڈٹی رہی.
سریا پھوپھو نے نہیں بتایا تھا کہ مسعود چچا کیوں ان سے ناراض ہو گئے؟
مسعود کی فاتحہ خانی میں مجھ سے دور دور رہیں. میں نے سوچا شاید اس لیے کہ مسعود سے ناراض ہیں، تو میں نے بھی ان سے کچھ نہیں پوچھا.
پھوپھی جان، پر میں نے تو مسعود انکل سے سریا پھوپھی کے گھر نہ جانے کا وعدہ نہیں کیا. میں ہر قیمت پر حمید چچا کو ڈھونڈ کر گھر لے آؤں گا. میں دادا جان کو اب مزید اس حالت میں نہیں دیکھ سکتا. ایک طرح سے میں خود کو قصوروار سمجھتا ہوں.
خود کو؟
ہاں، ہمیشہ سوچتا رہتا ہوں ایک بچکانہ کھیل اور آتش بازی کیسے اتنی جدائی کا باعث بن گئی.
نہیں بیٹا، نہیں مہدی بیٹا، سریا پھوپھی اور تمہاری ماں کا جھگڑا اس واقعے سے بہت پہلے سے شروع ہو چکا تھا، حتیٰ تمہارے پیدا ہونے سے بھی پہلے.
ہمیں ہر قیمت پر حمید چچا کو ڈھونڈ کر لانا ہوگا، اس لیے مجھے پہلے سریا پھوپھی کے پاس جانا ہے. اگر پھوپھی کو گھر لا سکا تو حمید چچا بھی واپس آ جائیں گے.
جہاں تک مجھے معلوم ہے، حمید دو سال سے زیادہ سریا کے پاس نہیں ٹھہر سکا، اس کے بعد چلا گیا.
مطلب وہ سریا پھوپھو کے ہاں بھی نہیں آتے جاتے؟
نہیں، قطع تعلق نہیں کیا ہوا ہے، لیکن اب وہاں نہیں رہتا.
دادا جان کی خاطر ہی صحیح، مجھے یہ کام ضرور کرنا ہوگا.
تم جو بھی کرنا چاہتے ہو بیٹا، کر لو. اتنے سالوں بعد مجھے بھی مسعود کی ناراضگی کا سبب معلوم ہو جائے.
پھوپھی جان، آپ سریا پھوپھی کا ایڈریس مجھے دے دیجیے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان سے مسعود چچا کی ناراضگی کا سبب پوچھوں گا.
تم نہیں پوچھو، اگر تم ان کا مقابلہ کر سکے اور اس کو یہاں لا سکے، میں خود ہی ان سے پوچھ لوں گی.
میں بھی ساتھ جاؤں گی، اگر یہ نہیں منا سکے تو میں منا لوں گی.
السلام علیکم.
ہاں کس سے کام ہے تم کو؟
میں محسن فرحمند کا بیٹا ہوں، آپ کے بھائی کا پوتا. پہچانا نہیں؟ میں مہدی ہوں.
میں کسی محسن کو نہیں جانتی، میں تمہیں کیسے پہچانوں گی کہ اس کے بیٹے ہو؟ جاؤ باہر نکلو، باہر نکلو ورنہ اتنا شور مچاؤں گی کہ لوگ آ کے تمہیں باہر پھینک دیں.
سوریا بھوبھی، میں خود کو آپ کے اوپر تھوپنے کے لیے نہیں آیا ہوں.
خبردار مجھے پھوپھی نہ کہنا.
جب میں یہاں آنا چاہ رہا تھا تو مجھے بتایا گیا کہ شاید آپ مجھ سے بدسلوکی کریں گے، لیکن چونکہ مجھے چچا حمید کو ڈھونڈنا ہے اس لیے کچھ پرواہ نہیں.
آخری عمر میں ہم سے تم معافی مانگ سکو. تمہارا باپ سمجھ رہا ہے کہ چونکہ میرے اور حمید کا حصہ اس نے ہڑپ کر لیا ہے تو اب اس بدقسمت حمید کو ڈھونڈ کے سارا معاملہ حل کر لے گا.
میں میراث پیسے اور حصے کے بارے میں بات کرنے نہیں آیا ہوں، میں صرف حمید چچا کو ڈھونڈ رہا ہوں، میرے لیے کچھ اور اہم نہیں.
کتے کو اپنے باپ کا پتا نہیں تھا تو بھونک بھونک کے امو 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 پکار رہا. بلا وجہ خود کو تھکاؤ نہیں. حمید کبھی بھی تم لوگوں سے راضی نہیں ہوگا. تمہارے باپ کو ورک شاپ مل گئی، میرے بیچارے بھائی کو جو پڑھاتے رہے وہ مانتا رہا. تمہارا گوشت تو تمہارے ماں باپ کا خون ہمارے مال سے بنا. جاؤ لڑکے، نکل جاؤ یہاں سے.
سوریا پھوپھی
نکل جاؤ یہاں سے.
سوریا پھوپھی چلائیے مت.
سوریا
پھوپھی
مدد کرو.
آپ چلا کیوں رہی ہیں؟
میری مدد کرو، مدد کرو، میری مدد کرو. ارے میری مدد کرو، مدد مدد.
السلام علیکم امی جان.
وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟
شکریہ. ابو ہیں گھر پہ؟
نہیں.
کہاں ہیں؟
دکان پہ گئے ہیں.
تو میں بھی ان کے پاس جا رہا ہوں.
نہیں نہیں، ابھی آ جائیں گے. کب کے گئے ہیں؟ اندر آ جاؤ. کیسے ہو؟
جی.
کیسے ہو بھائی؟
ہاں
کیا ہوا ہے تمہیں؟
ٹھیک ہوں.
کچھ ہوا ہے تمہیں؟
نہیں کچھ نہیں ہوا.
تمہارا رنگ کیوں اتنا اڑا ہوا ہے؟
نہیں ٹھیک ہوں.
تمہاری بیوی ٹھیک ہے؟
جی جی بہتر.
مہدی بیٹا کیا ہوا ہے؟ خدا نہ خواستہ تمہیں دادا کو تو کچھ نہیں ہو گیا؟
نہیں امی، خدا نہ کرے، ابو سے کام. السلام علیکم.
وعلیکم السلام بیٹا. بہت بہت شکریہ. کیسے ہیں بیٹا؟
ٹھیک ہو.
بیٹھو.
میں سوریا پھوپھی کے گھر گیا تھا.
تو وہاں گئے تھے جو یہ حالت ہوئی ہے؟
جی ہاں.
ارے واقعی تم بیکار ہو جو اپنے لیے مصیبت کھڑی کر رہے ہو، ابھی تک وہ سدھری نہیں ہے.
سوریا پھوپھی نے ایسا کیا کہا کہ تم اتنے پریشان ہو؟
کچھ نہیں، کہہ رہے تھے کہ آپ نے میراث کی تقسیم کے وقت دادا جان کو ورغلایا، کہہ رہے تھے کہ ان کے اور حمید کے حصے کو بھی آپ نے ہڑپ لیا، ورک شاپ اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح کی باتیں.
کیسی باتیں کر رہی ہیں یہ؟
ابو سوریا پھوپھی کیوں ایسا سوچ رہی ہیں؟ کیوں ایسی بات کہہ رہی ہیں؟
مجھے کہاں سے معلوم بیٹا، میرا تو میراث کی تقسیم میں کوئی کردار نہیں تھا. ابو نے خود ہی فیصلہ کر کے اپنا مال تقسیم کیا. میں تو ان سے الگ ہونا بھی نہیں چاہتا تھا.
حمید چچا اس میراث اور حصے وغیرہ کی وجہ سے آپ سے ناراض ہو گئے؟
غلط کیا اس نے. حمید نے ورک شاپ کے دو برابر پیسہ ان کو دیا ہے.
تم مجھے بولنے بھی دو گی؟ اگر آپ زیادہ جانتی ہیں تو آپ بتائیں، میں خاموش ہو جاتا ہوں. बेटा हम सब वर्कशॉप में काम करते थे, कोई मसला नहीं था। एक दिन हमीद चचा ने दादा जान से कहा कि मैं मजीद दूसरों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता।
क्यों?
नहीं जानता, मैं पिछले कई साल से मुनेरिया के घर से निकल गया था। मुझे नहीं मालूम कि घर में क्या मसाइल चल रहे थे, लेकिन हमीद चचा बहुत गुस्से में थे। चूंकि तुम्हारी फूफी सुरैया ने अपना सारा हिस्सा ले लिया था, उससे अपने लिए घर खरीदा था। हमीद ने आके दादा जान से कहा कि वर्कशॉप को दो हिस्सों में तकसीम करें ताकि वो अलग से अपना कारोबार स्टार्ट कर सकें। दादा जान ने कहा नहीं हो सकता, एक वर्कशॉप में दो अलग अलग तरह के काम नहीं चलेंगे।
वो कौन सा कारोबार चलाना चाहते थे?
घरेलू साजो सामान का कारोबार। दादा जान ने कहा हर काम के लिए अलग और मुनासिब जगह की जरूरत है। सच ही तो कह रहे थे, वो जूते सीने की वर्कशॉप थी। दादा जान नहीं माने, लेकिन चचा हमीद समझ रहे थे कि मैंने दादा जान को रोक दिया है। अलबत्ता वह जूतों के कारोबार से उकता गए थे। तुम्हारे दादा जान ने कहा मैं उनका हिस्सा दे दूं। वर्कशॉप हम में से किसी के नाम नहीं थी, अब्बू के नाम थी। हमीद ने अपना पूरा हिस्सा मांगा, बस उसको दे दिया ताकि वो अपना कारोबार शुरू कर सके।
ताज्जुब।
तो सुरैया फूफी कह रही थी कि मैंने तुम्हारे चचा हमीद का हक मारा है।
बकवास कर रही है। तुम जाके अपने दादा से पूछ सकते हो, वो असल मालिक थे, वो जिंदा है अभी।
दादा जान को बता दिया कि सुरैया फूफी क्या कह रही थी?
नहीं बिल्कुल नहीं, नहीं बताया, वहीं जा रहा हूँ।
अच्छा किया बेटा।
क्या मतलब है आपका? ये अभी सोच रहा होगा कि हम कुछ जानते हैं लेकिन उससे छुपा रहे हैं।
मैं कुछ नहीं सोच रहा हूँ, लेकिन जब सुरैया फूफी ने मेरे मुंह पर ये सब बताया तो मेरा दिमाग घूम गया बिल्कुल।
अब्बू जान ने मीरास की तकसीम के मसले पर बहुत परेशानियां उठाई हैं। मैं नहीं चाहता कि इतने साल बाद उनको दोबारा परेशान किया जाए। हुमा फूफी को तमाम हालात का इल्म है, उससे पूछ सकते हो, लेकिन अपने दादा को कुछ नहीं बताना।
ठीक है।
सुकून से हम जिंदगी गुजार रहे थे, फिर वही पुराने बखेड़े सामने आ गए। मैं जाके तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ।
ये सब सुरैया की बातें हैं, हमीद ऐसा नहीं कहेगा। उसने 10 दफा आके मुझसे पूछा कि तुम वर्कशॉप लेने पर राजी हो कि नहीं। अब इतने सालों के बाद आके कहेगा कि हमने उसे धोखा दिया है?
नहीं, ऐसा नहीं।
जब सुरैया फूफी ने मुझसे ये बातें की तो मैं सोच में पड़ गया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम आजकल जिस मुसीबत में मुब्तला हैं इसकी वजह कहीं यही दिल का टूट जाना, किसी का राजी ना होना।
ये कैसी बातें कर रहे हो मेहदी? इंसान शायद एक दूसरे से नाराज होते हो, लेकिन खुदा तो हमारी नाराजगी की बुनियाद पर हमें सजा नहीं देगा ना। कैसी बातें हैं ये?
अब ये सारे बातें एक तरफ, आपने एक बात की कभी भी हमें वजाहत नहीं दी, और वो ये कि हर महीने आप सुरैया फूफी को जो पैसे देते हैं वो क्या है? अगर उनका वर्कशॉप में कोई हिस्सा नहीं है तो ये पैसा क्यों दिया जा रहा है?
नहीं, उनका कोई हिस्सा नहीं। सुरैया ने अपने शौहर असदुल्ला खान को कुछ रकम दी थी, लेकिन दोनों में इख्तलाफ पैदा हो गया और सुरैया फूफी ने उनसे पैसा लेकर चचा हमीद को दिया। कुछ अरसे बाद हमीद के कारोबार में गड़बड़ हो गई और सुरैया का मुनाफा नहीं दे सके। सुरैया शिकायत लेकर अब्बू जान के पास आई, मैं भी वहीं पर था। जब देखा कि बात बिगड़ रही है तो सुरैया फूफी को इमदाद के तौर पर कुछ रकम दी, लेकिन इस रकम का मीरास या हिस्से से कोई ताल्लुक नहीं है।
अच्छा
बेटा, अगर अब भी मेरी बातों पर शक है तो जाके हुमा फूफी से पूछ सकते हो, उन्हें इन तमाम बातों का इल्म है।
नहीं अबू जान, कोई शक नहीं है, हमें मानना पड़ेगा कि इतनी दूरियों और इतने इख्तलाफात के बाद ऐसी बातें और गलत फहमियाँ फितरी बात है। अबू जान चाय पीजिए, ठंडी ना हो जाए। मैं जा रहा हूँ वर्कशॉप, अहमद चचा से जरा कह के आऊँ कि वर्कशॉप में सामान जरा समेट दें, ये फानी साहब वर्कशॉप के दरवाजे पर आए थे।
जाओ, खुदा सलामत रखे।
अपना ख्याल रखना बेटा।
आप ना आइए, आपकी चाय ठंडी हो रही है।
ठीक है बेटा, जाओ, खुदा हाफिज।
सलाम अलैकुम है चचा।
सलामैकुम, बैंक से वर्कशॉप देखने आए थे।
किस बैंक से?
नहीं मालूम, मेमारियान नाम के एक आदमी थे।
अच्छा,
आप जानते हैं?
हाँ, उसने ये जगह खरीदी है, शायद यहाँ कागजात पर लोन लेना चाहता।
अच्छा, आपका नाम लिया वरना मैं अंदर नहीं आने देता।
अच्छा किया।
अच्छा वैसे बैंक वाले जो आए थे छत पर भी गए, तहखाने में भी गए, सारा वर्कशॉप छान मारा उन्होंने।
अच्छा,
ये साहब क्या नाम था उनका?
मेमारियान।
हाँ हाँ, उनसे पूछा कि अब क्या करना चाहते हैं तो कहने लगे यही काम, लोन लेके जूते एक्सपोर्ट करूँगा।
अच्छा।
वैसे बैंक वाले भी हंसने लगे थे।
उनको तो हंसना ही था। ये चीज़ें आपने हटाई हैं?
हाँ, बस थोड़ा सा इधर उधर किया था।
अहमद चचा, जिस तरतीब से एक दूसरे के ऊपर रखी हुई थी चीज़ें, अब वो तरतीब नहीं है।
माफ कीजिएगा, मैं लिखना पढ़ना नहीं जानता ना, आइंदा नहीं हाथ लगाऊंगा।
चाय तैयार है चाचा?
जी जी जी,
जरा जहमत
बस कीजिए। अभी लाता हूँ, अभी लाता हूँ।
बहुत बहुत शुक्रिया।
आपने इसको हाथ लगाया है?
नहीं। मेरे ख्याल में कल रात के तूफान की वजह से हमारा भी खराब हो गया है।
नहीं, ये अभी अभी कटा है।
मैंने हाथ नहीं लगाया, वायर भी सब अपनी जगह पर है। आप एक दफा फिर सर्च करें, शायद ठीक हो जाए।
मैं कुछ खास इन चीजों के बारे में नहीं जानता।
लेकिन मैं बहुत जानता हूँ, अपना रिसीवर हमेशा खुद ही ठीक करता हूँ। आप चाहें तो आकर आपका रिसीवर भी ठीक कर सकता हूँ।
नहीं, बहुत शुक्रिया, जिस आदमी से लगवाया था उसी को बुलाकर ठीक करवाती हूँ।
जैसी आपकी मर्जी, लेकिन मालूम नहीं वो कब आएगा, और आया भी तो आने का पूरा पूरा पैसा लेगा। क्या फर्क पड़ता है, जो काम मैं करूँगा वो भी वही करेगा।
लेकिन आपको सहमत होगी। ठीक है, जब आपका अपना ठीक हो जाएगा तशरीफ ला के मेरा रिसीवर भी ठीक कर दें प्लीज।
सलामुअलैकुम।
वालेकुम सलाम। जल्दी काम खत्म हो गया?
मुझे अपने काम की जल्दी नहीं है, सोचा पहले आपका रिसीवर ठीक करूं कि आप अपना ड्रामा देख सके।
जी आइए।
इसका रिमोट कहाँ है?
वहां है।
अस्सलामु अलैकुम।
आप कौन है?
चैन लुढ़ गए थे, मैं ठीक करने आया हूं।
कोई जरूरत नहीं है, तशरीफ ले जाइए।
अस्सलामु अलैकुम। इसका सिस्टम ज़रा ख़राब हो गया था, मैंने उससे दरख्वास्त की कि
यहाँ बहुत सी चीज़ों का सिस्टम ख़राब है, सिर्फ रिसीवर का नहीं। जाओ बाहर जाओ।
क्या हुआ? तुमको तो मुझसे बात नहीं करना थी। क्या करती? डिश के चैनल सुबह से नहीं आ रहे थे।
यह आदमी कौन था?
फतेहलाई साहब का बेटा, इसी बिल्डिंग में रहते हैं। सोचा किसी पुराने इलेक्ट्रिशियन को बुलाने के बजाय बेहतर है इसको बुला लूं। क्या है फरहाद, तुम क्यों इतने बनाने लगे हो? हर चीज पे एतराज क्यों करने लगे हो? अरे अपने दिल की बात करो, इधर उधर के बहाने मत बनाओ। क्या फैसला करना है? मैं जो काम करती हूँ तुम नाराज हो जाते हो। सिनेमा जाती हूँ नाराज हो जाते हो, कहती हूँ कि मालिक मकान के किराए दे दो नाराज हो जाते हो, इलेक्ट्रिशियन को बुलाती हूँ तो नाराज हो जाते हो।
इतनी बेरब बातें मत करो सहर, दो दिन बगैर डिश के नहीं रहती तो मर जाती क्या? मर जाती? अरे जब तुम घर में अकेली होती हो तो क्यों किसी को अंदर आने देती हो?
पर मैं तो हमेशा अकेली ही रहती हूँ। मैं बदबख्त इस घर में अकेली रहती हूँ, मुझे खुद ही अपने मसाइल हल करने होंगे।
अगर तुम्हें अपने मसाइल खुद हल करने आते हैं तो मालिक मकान को किराया देने का मसला भी हल कर लेती। मुझे क्यों फोन करके बुलाया? तुम ही कुछ इशारा देती होगी जो तुम्हें फोन करता है। अगर तुम उसको लिफ्ट ही न कराती तो इस तरह के हालात पेश ही नहीं आते।
अरे वो 80 साल का बूढ़ा है, क्या फॉल फॉल बक रहे हो?
तुम्हारे लिए बूढ़े और जवान का क्या फर्क है? तुम उन औरतों में से हो जिन पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता।
तुम कितने कमीने हो, तुम कितने बेगैरत हो। कोई अपनी बीवी के बारे में इस तरह की बात करता है?
अपनी बीवी? तुम मेरी बीवी नहीं हो। मेरी बीवी शाइस्ता है और तुमसे बहुत मुख्तलिफ है।
वाकई में बड़ी घटिया हो, बहुत ही घटिया हो। मैं तुम्हारा हिसाब सिर्फ खुदा के हवाले करती हूँ।
और मैं तुम्हें तुम्हारे हवाले करता हूँ। तुम्हारी रस्सी खुद तुम्हारे ऊपर डालना चाहता हूँ, देखता हूँ कि तुम क्या करती हो। याद रखो ये आखिरी किराया जो मैं दे रहा हूँ, इसके बाद मुझे फोन मत करना। मेरे सहारे मत बैठना सहर। सिर्फ किराए के लिए नहीं बल्कि हर चीज के लिए अपना कोई इंतजाम कर लो।
फरहाद, फरहाद डियर, एक मिनट मुझे देखो।
हाँ कहो।
नहीं मेरी तरफ देखो, देखो जाओ, जाओ और वापस मत आओ। सिर्फ मेरा हक मेहर दे दो।
क्या दूं?
मेरा हक मेहर। क्या इन चंटकों से सब कुछ हल हो जाएगा?
मुझे तुम्हें पहले ही नजर में पहचान।
नहीं, मुझे समझ जाना चाहिए था कि तुम कितने बेगैरत तो कमीने इंसान हो।
घर के एडवांस का पैसा अपने हक मेहर के बदले ले लेना। इसके बाद मुझे कभी किसी काम के लिए फोन मत करना। फरहाद मर गया है।
जहन्नम में जाए।